पांडित्य की लोकोन्मुखता, लोक और शास्त्र का द्वंद्व। मध्यकालीन भारत का इतिहास वस्तुतः वर्ण संघर्ष के साथ ही विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के परस्पर संघर्ष का इतिहास है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि मध्यकालीन समाज व्यवस्था, जिस पुरोहिती सामंती दमन चक्र के नीचे पिसकर धार्मिक आर्थिक शोषण के कारण जर्जर और खोखली हो गई थी, उसकी प्रतिक्रिया शताब्दियों पहले से भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि बना रही थी। अकबर के समय तक आते आते उसका रूप काफी उग्र हो चुका था। आचार्य द्विवेदी लक्ष्य करते हैं कि हमारे इतिहास में यह समय एक प्रकार से संस्कृति और राजनीति के पराभूत होने का काल है, किंतु पूरे देश पर विदेशी शक्तियों का वर्चस्व स्थापित हो जाने के बावजूद भारत की अस्मिता निस्तेज नहीं हुई थी। 15वीं-16वीं शताब्दी में ही आधुनिक भारत का एक नया नक्शा बन रहा था। उनका विश्वास है कि हिंदू शताब्दियों को छोड़ दिया जाए तो हिंदी साहित्य में कुछ रह ही नहीं जाता। यह एक अद्भुत विरोधाभास है, पर है सच। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली खंड 4। जाहिर है कि यह घोषणा करते समय उनके सामने भारतीय हिंदू प्रेमचंद, निराला और प्रसाद भी रहे होंगे, तो क्या यह उनकी गर्वोक्ति मात्र है? मेरी समझ से आचार्य द्विवेदी आधुनिक नवजागरण की पृष्ठभूमि के रूप में मध्ययुगीन लोक जागरण को रेखांकित करते हुए इन आधुनिक रचनाकारों की कीमती विरासत को ही महिमा मान्वित कर रहे हैं, जिसे प्रतिक्रिया में लिखा गया हददर्भ जाति की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। सच तो यह कि मुसलमानी आक्रमण के पहले जितनी भी विदेशी जातियां भारत में आई, भारतीय वर्ण व्यवस्था को तहस नहस करने के बावजूद वे उसी में समा गई, क्योंकि उनके पास अपनी कोई सुसंगत सांस्कृतिक परंपरा नहीं थी। भारतीय समाज में इनके घुल मिल जाने के फलस्वरूप उत्पन्न विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंदू शास्त्रकारों ने नई नई स्मृतियों और पुराणों की रचना की। पुराने पुराणों के स्तूपीभूत संग्रह के साथ सापेक्ष विधि व्यवस्थाओं की खोज शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप टीकाकारों, भाष्यकारों और निबंध ग्रंथों की बाढ़ सी आ गई। इसीलिए आचार्य द्विवेदी इस जटिल और विषम हो उठी सामाजिक परिस्थिति के काल को टीका युग के नाम से संबोधित करते हैं। इस विषम परिस्थिति का ठीक ठीक अनुमान न कर पाने के कारण टीका युग के पंडित यह समझ रहे कि लगातार अनियंत्रित होती जा रही समाज व्यवस्था और भयंकर उथल पुथल के लिए मूलतः अक्रांता मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। धर्म और शास्त्र को राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने वाले एक हरी समझ के इन विद्वानों ने समाज के अंदर विरोधों को देखने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को बचा रखने के लिए सभी विद्वान मानव हिंदू शास्त्रों की सारी शक्ति समेत के विदेशी शक्ति का सामना करने के लिए आकाश पाताल एक किए दिए रहे थे। ये नोटेड कमा। इससे बढ़कर उपहासास्पद बात और क्या हो सकती है कि मुसलमान तो गदा के आघात से सोमनाथ की मूर्ति को चूर्ण विचूर्ण कर रहे हैं और हिंदू इस आक्रमण से रक्षा पाने के लिए मिताक्षरा लिखा करें। यह टुटका बंद सुर साहित्य। यह है मुस्लिम आक्रमण से पराजित आचार्य शुक्ल की उदास और निराश हिंदू जाति का वास्तविक स्वरूप। निश्चय यह जटिल समस्या मुस्लिम आक्रमण के पहले से भारतीय समाज में विद्यमान थी और इस शास्त्रीय समस्या का कारण सामाजिक और धार्मिक था। मुसलमानों के प्रतिष्ठित होने के बहुत पहले ही बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हिंदू धर्म में घुल मिल रहा था। बौद्ध धर्म की अनेक विशेषताएं जैसे दुखवाद, वैराग्य, मूर्ति पूजा आदि हिंदू धर्म में भाईचारों का स्तूपीभूत प्रतीक मात्र रह गया था। धर्म के अंतर्वस्तु से वह क्रमशः दूर होता जा रहा था। भारतीय इतिहास का यह वह समय है जब पूर्वी और उत्तरी भारत का समाजशास्त्री रूढ़ियों के विरोधी नाथपंथी योगियों के प्रभाव से पूरी तरह आ चुका था। आचार्य द्विवेदी के अनुसार ये लोग बौद्ध धर्म की महायानी शाखा के उत्तराधिकारी थे और अपने परिवर्तित रूप में इन्होंने बुद्ध के स्थान पर शिव के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। इसी समय पश्चिम से आने वाले बेशरा और शास्त्रीय सूफी साधना ने भी भारतीय हृदय पर अपना अधिकार जमाया और भारतीय साधना पद्धति के विरोधी न होने के कारण हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को आधार बनाकर अपना शुद्ध प्रेम प्रदर्शित प्रेम संदेश साधारण जनता तक पहुँचाने में उन्हें अद्भुत सफलता मिली। किंतु टीका युग के आचार प्रधान धर्म से इनका तालमेल न हो सका। यही कारण है कि आचार प्रधान वर्णाश्रम धर्म के नीचे गुप्त रूप से प्रवाहित हो रही निर्जन पंथी और नाथपंथी साधना इनके संयोग से और विवेकवान हो उठी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में बड़े विस्तार के साथ बौद्ध धर्म के सामाजिक रूपांतरण की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए यह स्थापित किया है कि बौद्ध धर्म बड़े व्यापक स्तर पर मध्यकालीन भारतीय चिंताधारा को प्रभावित करता रहा है। समाज के बुद्धिजीवियों और ऊपरले स्तर के लोगों के मन पर उसके तत्ववाद का प्रभाव तो पड़ा था, जिसे बाद में चलकर शंकर, कुमारिल और उदयन जैसे वेदांतिकों और मीमांसक आचार्यों ने निरस्त कर दिया था। किंतु भक्तिवाद के भी कायल नहीं थे। दूसरी ओर साधारण जनता इस तत्ववाद से प्राय अपरिचित रही। आगे चलकर राजाश्रम में स्थापित बौद्ध मठों के उजड़ जाने से उसे निचले स्तर के लोगों को आकर्षित करना पड़ा और बड़े बड़े बौद्ध मठ क्रमशः शैव मठों में रूपांतरित होने लगे। 8वीं-9वीं शताब्दी में बौद्धों की महायान शाखा और उसके तंत्र मंत्र, जादू टोना और ध्यान धारणा आदि ने बड़े व्यापक रूप से भारतीय जनमानस को आकर्षित किया था। 8वीं शताब्दी में बंगाल के पाल शासकों के संरक्षण में पलता हुआ बौद्ध धर्म नेपाल और तिब्बत में विकसित हो रहा। आचार्य द्विवेदी का विश्वास है कि हिंदू साहित्य के जन्म के समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अनेक बड़े और बौद्ध मठ विद्यमान थे। उड़ीसा का महिमा संप्रदाय, बंगाल के रमाई पंडित का शून्य पुराण, वीरभूमि में पाई जाने वाली धर्म पूजा आदि इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म के भग्नावशेष हैं। इसलिए आचार्य द्विवेदी का निष्कर्ष है कि इनोटेड कामा, जिन दिनों बौद्ध धर्म उत्तर लोक धर्म में घुल मिल रहा था, उन्हीं दिनों ब्राह्मण धर्म उत्तर अलग होता जा रहा था। इनोटेड कामा, जाहिर है कि ब्राह्मण धर्म अपनी आंतरिक प्रेरक शक्ति खो चुका था और बाह्याचारों का प्रतीक बनकर लोक जीवन की प्राणधारा से अलग थलग पड़ता जा रहा था। आगे इस सलकाव की दिशाओं को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, इंटरेट कामा, मूल ग्रंथों की टीकाएं, उनकी भी टीकाएं इस तरह कभी कभी 6-6, 8-8 पुस्त तक टीकाओं की परंपरा चलती गई। इंटरेट कामा, जाहिर है कि चिंता पारतंत्र ही इन टीकाओं का मूल स्वर है और स्वतंत्र चिंतन के अभाव में इस युग की पांडित्य परंपरा प्रत्यक्ष जीवन से और भी दूर हटती जा रही थी। यह बात दूसरी की, कभी कभी स्वतंत्र मत प्रतिपादन के लिए भी निबंध ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की दृढ़ मान्यता है कि इनोटेड कामा, यह चिंता पारतंत्र मुसलमानी धर्म के जन्म के बहुत पहले से उठा चुका था और परवर्ती हिंदी साहित्य में उसके अग्र रूप को देखकर यह कहना कि यह विदेशी शासन की प्रतिक्रिया थी बिल्कुल गलत होगा। इनोटेड कामा बंद। यद्यपि यहाँ आचार्य द्विवेदी ने परवर्ती हिंदी साहित्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं की, किंतु टीकाकारों की चिंता पारतंत्र कि उनके विवेचन से यह समझा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के अंतिम दौर में पौराणिक आख्यानों के शास्त्रीय मतवाद के आग्रह से गुजरती हुई रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों में चिंता पारतंत्र की उग्रता स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जिसमें उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य के पुनर्निर्माण का भोंडा प्रयास किया गया है। कहना न होगा कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि सामाजिक निरंतर को महत्व देने वाली एक विकासवादी दृष्टि है, जिसके आधार पर वे लोक और शास्त्र के द्वंद्वात्मक संबंधों की अपेक्षा में अपनी परंपरा के स्वाभाविक विकास का सही मूल्यांकन कर सके हैं। लोक धर्मी भक्ति काव्य की सामाजिक पृष्ठभूमि पर गहराई से विचार करते हुए वे लिखते हैं, इनके कामा, इस प्रकार महायान संप्रदाय या यूं कहिए कि भारतीय बौद्ध संप्रदाय सनिस्वी के आरंभ से ही लोक मत की प्रधानता स्वीकार करता गया, यहाँ तक कि अंत में जाकर लोक मत में घुल मिलकर लुप्त हो गया। सनिस्वी के 1000 वर्ष बाद तक यह अवस्था सभी संप्रदायों, शास्त्रों और मतों की हुई। मुसलमानी संघर्ष से उसका कोई संपर्क नहीं है। 1000 वर्ष पहले से वे ज्ञानियों और पंडितों के ऊंचे आसन से नीचे उतरकर अपनी असली प्रतिष्ठित भूमि लोकमत की ओर जाने लगे। उसी की स्वाभाविक परिणति इस रूप में हुई। उसी स्वाभाविक परिणति का मूर्त प्रतीक हिंदी साहित्य है। इनोटेड कामा, हिंदी साहित्य की भूमिका। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आचार्य द्विवेदी लोक जीवन को ही धर्मों, संप्रदायों, मतों और शास्त्रों की प्रकृत भूमि मानते हैं, क्योंकि ये लोक धारा से कट कर न केवल अपने लोक मंगलकारी सामाजिक भूमिका की सार्थकता खो देते हैं, बल्कि मंदिरों, मठों और बिहारों में सीमित होकर एक ऐसी रूढ़िवादी अंतरधारा का निर्माण करते हैं जो व्यापक जन समुदाय के बीच प्रवाहित होने वाली लोक धर्मी प्राणधारा के स्वाभाविक विकास में गत्यावरोध उत्पन्न करती है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी मुस्लिम संघर्ष से 1000 साल पहले भारत की लोकोन्मुखी चिंताधारा को ठीक से पहचानते हुए हिंदी साहित्य को उसका स्वाभाविक विकास मानते हैं और इसी रास्ते उसे देखने का प्रस्ताव करते हैं। इनोटेड कामा, मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश करता हूँ। इनोटेड कामा बंद। ध्यान देने की बात है कि मतों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से बाहर हिंदी भक्ति काव्य को मापने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोक धर्म और आचार्य द्विवेदी के लोक धर्म का अंतर भी यहाँ स्पष्ट हो जाता है। आचार्य शुक्ल का लोक धर्म वस्तुतः आर्य शास्त्र नवोदित वर्णाश्रम धर्म है, जिसकी वर्जनामूलक आचार संहिता का अनुपालन करने वाला सीमित समाज ही आचार्य शुक्ल का लोक है और उसकी रक्षा करना लोक धर्म है। पौराणिक आख्यान, अवतारवाद, छात्र धर्म, लोक मंगल और कर्म सौंदर्य उसके प्रभाव मंडल का सामाजिक विस्तार करने वाले प्रतिमान है। यही कारण है कि जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध कर व्यापक जनसमुदाय की चित्तवृत्तियों को प्रभावित करने वाले तथा मनुष्य मात्र के लिए एक जाति धर्म निर्विशेष मार्ग की तलाश करने वाले तथाकथित नीची जातियों के निर्गुण पंथी भक्त कवि आचार्य शुक्ल की दृष्टि से लोग विरोधी इसलिए सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि वे भक्ति के नाम पर वेद शास्त्रों की निंदा तथा आर्य धर्म के सामाजिक तत्व को न समझकर लोगों में वर्णाश्रम धर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लोक धर्म की अवधारणा गौरी बौद्धिक अवधारणा नहीं है। उसके केंद्र में वह संपूर्ण मनुष्य है जिसकी विकास गाथा हजार वर्ष पूर्व के सुदीर्घ इतिहास तक फैली हुई नाना जातियों धर्मों संप्रदायों मतवादों और उनकी विभिन्न साधना उपासना पद्धतियों विश्वासों अंधविश्वासों का अक्षय स्रोत है। एक वर्ग विभाजित समाज में प्रभुवर्गीय हितों का पोषण करने वाली तथा सामाजिक आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध करने वाली वर्णाश्रम व्यवस्था पर प्रहार करने की लंबी परंपरा रही है। अतः इस व्यवस्था के विरोध की परंपरा ही विकासवादी परंपरा है जिसके कारण संघर्षशील चेतना के साहसिक अभिव्यक्त करने वाले भक्त कवियों को लोकवादी और उदार कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के लोक धर्म के प्रतिमान तुलसी है तो आचार्य द्विवेदी के लोक धर्म के प्रतिमान कबीर और सूर है। सूर ने शास्त्रीय वैष्णव मत से प्रेरणा तक ली है जहाँ तक वह भक्ति से घुल मिल सकता है और तुलसी ने भक्ति की उसी सीमा तक स्वीकार किया जहाँ तक वह शास्त्र मत के अनुकूल पढ़ सकती थी। निसंदेह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली बार हिंदी भक्ति आंदोलन को एक विराट जन आंदोलन घोषित करते हुए लोक और शास्त्र के द्वंद्वात्मक संबंधों के इतिहास सम्मत व्याख्या प्रस्तुत की। उनका निष्कर्ष है कि यूनाइटेड कमा भारतीय पांडित्य ईसा की एक सहस्त्राब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्र में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न भी घटी होती तो भी वह इसी रास्ते आता। उसके भीतर जो शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेले लिए जा रही थी। ये नोटिका हिंदी साहित्य की भूमिका जाहिर है कि लोक शक्ति के बढ़ते हुए दबाव के कारण शास्त्र को लोक की ओर झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा था और यह प्रक्रिया इस्लामी प्रभाव के बहुत पहले से चली आ रही थी। अतः इसे स्वाभाविक विकास के रूप में ही लेना चाहिए बाहरी प्रभाव के रूप में नहीं क्योंकि उसके भीतर लोक शक्ति के रूप में समाज की वह प्रेरणा शक्ति काम कर रही थी जो अभी निस्तेज नहीं हुई थी। यही कारण है कि आचार्य द्विवेदी इस हजार वर्ष की साहित्यिक चेतना को अस्वाभाविक अधोगति के रूप में नहीं बल्कि जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में देखने का विश्वास प्रस्ताव करते हैं जो निश्चय ही उत्थान मूलक नरेंद्र को रेखांकित करने वाली एक वैज्ञानिक दृष्टि है। वस्तुतः हिंदू शास्त्रकारों और उनके समर्थ बुद्धिजीवियों का समुदाय मुसलमानों के आने से स्तब्ध रह गया तो इसीलिए कि उनके पास एक सुसमृद्ध सांस्कृतिक परंपरा ही नहीं थी बल्कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उसमें भारतीय संस्कृति के विरोधी उपादान भी थे। इसीलिए हिंदू शास्त्रकारों के समक्ष बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसे सुलझाने का कोई कारगर उपाय उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत से इतिहासकारों ने इसका कारण मुसलमान बादशाहों द्वारा मंदिरों मूर्तियों का तोड़ा जाना तीर्थों को भ्रष्ट करना भोली भाली जनता को मुसलमान बनाना तथा हिंदू भले घरों के बहु बेटियों का सतीत्व नष्ट करना आदि बताकर केवल आंशिक सत्य का उद्घाटन किया है। अधिकांशतः उनकी दृष्टि सांप्रदायिकतावादी ही रही है। माना कि औरंगजेब जैसे मुसलमान शासकों की दमनकारी प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही उग्र रही है लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि दमन और अत्याचार में देशी सामंतों की भूमिका कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं थी। इतना तो सांप्रदायिक इतिहासकार भी स्वीकार करेंगे कि अकबर के समय तक आते आते अत्याचार और दमन का वही स्वरूप नहीं रह गया था जैसे पहले कभी रहा होगा। अन्य मुसलमान बादशाहों की तुलना में अकबर बहुत कुछ उदार और सशक्त शासक रहा है। उसने सभी धर्म और संप्रदायों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर परस्पर विचार विनिमय और धार्मिक कट्टरता को कम करने और सांप्रदायिक सद्भावना बनाने की दिशा में एक प्रयास तो किया ही। असफलता के बावजूद मेरी समझ में तीन इलाही की स्थापना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम था। यही नहीं उसने हिंदू सामंतों के साथ केवल मेल जोल नहीं बढ़ाया बल्कि अपने घनिष्ठ पारिवारिक संबंध को भी स्थापित किए। लेकिन अकबर का यह गतिशील प्रयास कट्टरपंथी मुसलमानों और हिंदुओं को रास नहीं आया। यह कारण नहीं है कि दीन इलाही का सर्वाधिक विरोध मुल्ला मौलवियों और अभिजात कुलीन मुसलमानों ने किया था और हिंदू सांप्रदायिकता ने भी उसके प्रति अपनी उपेक्षा दिखाई। सूर तुलसी और कुंभनदास के अकबर से भेंट संबंधी किंवदंतियां इसका प्रमाण है। यह बात दूसरी है कि हम अपनी सांप्रदायिक भावना को छिपाने के लिए बड़े गर्व के साथ यह प्रचार करते फिरे कि यह भक्त कवि इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने अकबर के निमंत्रण को ठुकरा दिया और असत्ता का विद्रोह किया। संतन को कहां सी करी सो काम जैसी युक्तियों की मूल ध्वनि सत्ता और सत्ता केंद्रों के प्रति उनकी उदासीनता है क्योंकि अकबर ने उन्हें आमंत्रित किया होगा तो मजहबी एकता का कोई मार्ग दौड़ने को मदद देने के लिए न कि कोई बड़ा पुरस्कार प्रदान करने के लिए। अकबर की नीयत पर बहुतों को संदेह हो सकता है कि राजा राज विस्तार के और प्रजातंत्र प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसकी कूटनीतिक चाल थी। इस संदर्भ में निवेदन यह है कि अकबर के मन में दीन इलाही की योजना तब आई जब उसकी रियासत तक काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी और किसी प्रकार खतरे की कोई आशंका नहीं रह गई थी। सांप्रदायिक इतिहासकारों की दृष्ट सीमा यह है कि वे अपने वर्गीय हितों के चलते ऐतिहासिक घटनाओं का ऊपरी विवेचन तो करते हैं किंतु समाजशास्त्रीय विश्लेषण की गहराई में जाने से कतराने लगते हैं। उनकी सारी शक्ति इस विवाद में जाया हो जाती है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अथवा अपने मूल रूप में वह किसी हिंदू शासक का राजमहल था। इस निर्णय के पीछे की कड़ी सच्चाई को या तो वे देख नहीं पाते या देख कर अनदेखा कर देते हैं कि आधुनिक साधनों के अभाव में मकराना के सफ़ेद संगमरमर के पत्थर कैसे लाए गए होंगे, इस प्रक्रिया में कितने मजदूर बेघर बार हो गए होंगे, कितने ही स्वयं नींव के पत्थर बन गए होंगे। उन बेचारे गरीब मजदूरों और कामगारों को कहाँ मालूम था कि जिस सामंती प्यार की मददगार को यादगार को संवार रहे हैं वह उन्हीं की विपन्नता का सबसे खूबसूरत स्मारक बन जाएगा। ताजमहल का कलात्मक सौंदर्य हमारी कीमती विरासत है, उस पर हमें गर्व है, किंतु विडम्बना तो यह है कि हम एक साथ ही उसे प्यार भी करते हैं और उसकी नींव में प्रच्छन्न रूप से दफन सामंती क्रूरता के प्रति हमारे मन में सात्विक घृणा का भाव भी उत्पन्न होता है। हिंदी की साहित्य यात्रा में इस समय इस तरह के भव्य ताजमहल दिखाई पड़ेंगे किंतु देखना यह है कि हम उसकी बाया सुंदर और भव्यता से ही अभिभूत होकर रह जाते हैं अथवा नींव में बंद करुण गाथा को भी जानने की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में किसी वस्तुवादी दृष्टि की अपनी पहचान बन सकती है। अतः जो इतिहासकार भक्ति आंदोलन के लिए मूलतः मुसलमान बादशाहों के अत्याचार को उत्तरदायी ठहराते हैं वे एक तरह तो ऐतिहासिक सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं और दूसरी ओर उनके समर्थक के द्विदंतियों को और कुछ उदाहरणों के आधार पर तुलसी को राजसत्ता के विरोधी घोषित कर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संगति बैठाने का भ्रम भी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मध्ययुगीन समाज व्यवस्था का मुख्य अंतर विरोध राजसत्ता और साधारण जनता का द्वंद्व था ही नहीं। आगरा दिल्ली जैसे सत्ता केंद्रों से संतों और भक्तों को कुछ लेना देना नहीं था, इसीलिए उसके प्रति उनके मन में अपेक्षा भाव भी दिखाई पड़ता है। जनता के बीच अंतर विरोध तो दूसरा ही था। इसका विवेचन करते हुए डॉक्टर नामोल सिंह ने लिखा है, ये नोटेड कामा, साधारण जनता के जिन दुखों से भक्त कभी दुखी थे उनका सीधा संबंध आगरा या दिल्ली के तख्त पर बैठे बादशाह से उतना न था जितना अपने गांव के समाज से जिसका नियमन जाति धर्म के परंपरागत नियमों से होता था तथा जिसमें राजसत्ता के स्थानीय प्रतिनिधि गांव के मालिकों के सहयोग से दमनकारी भूमिका निभाते थे। इस ग्रामीण व्यवस्था में जहाँ परंपरागत जाति धर्म जीवन के समस्त क्रियाकलापों का नियामक था सरकार की हैसियत एक भारी लुटेरे से अधिक न थी जिसे बहुत कुछ अनावश्यक या फालतू मानकर भी काम चलाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में सरकार के विरोध विशेष अर्थ नहीं रखता। मुख्य शत्रु जबकि अपने अंदर ही हो तो विरोध का लक्ष्य स्वभावतः वही होगा और चूंकि यह जाति व्यवस्था धार्मिक विधि विधानों के रूप में ही समाज का नियमन करती रही है इसीलिए दलित जातियों का संतोष और आक्रोश भी प्रायः धर्म के रूप में प्रकट होता रहा है। दूसरी परंपरा की खोज। समाज में भक्ति आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करते हुए इतना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी स्वीकार करते हैं कि पंडितों और मौलाओं की तो नहीं कह सकते लेकिन साधारण जनता राम और रहीम की एकता के कायल हो चुकी थी। तात्पर्य है कि साधारण जनता निर्गुण आंदोलन की जाति धर्म निरपेक्ष विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित थी किंतु सांप्रदायिक तत्वों और अभिजात वर्ग के लोगों ने इसे अस्वीकार करते हुए सगुण भक्ति के रूप में अपना प्रति आंदोलन खड़ा कर दिया। इस प्रक्रिया में मुस्लिम अभिजात वर्गियों ने कृष्ण भक्ति शाखा तक के साथ दिया किंतु राम भक्ति शाखा तक आते आते उन्होंने पूरी तरह साथ छोड़ दिया क्योंकि यहाँ दोनों की धार्मिक अहमान्यता ने एक दूसरे का साथ देना स्वीकार नहीं किया। ध्यान देने की बात भक्ति आंदोलन के प्रति मुस्लिम विकर्षण का मूल कारण धार्मिक है। कृष्ण भक्ति में उसकी भागीदारी का कारण यह है कि उसमें शास्त्र मत का दुराग्रह नहीं था क्योंकि उसने वैष्णव मत से प्रेरणा अवश्य ली थी किंतु उसकी आत्मा और बौद्ध धर्मानुदोदित लोकधर्मी चेतना से अनुप्राणित रही है। उसके अलावा कबीर और जायसी की जात धर्म निरपेक्ष निर्गुण आंदोलन में भी वह प्रभावित था। दूसरी ओर शुद्धता की तलाश में उत्तरोत्तर अलग पड़ता जा रहा ब्राह्मण धर्म टीकाकारों की चिंता से चिंतित नाना पुराण निगमागम सम्मत बनकर अपनी जड़ें समाज जमा चुका था इसीलिए मुस्लिम रचनाकारों का उनके साथ तालमेल न हो सका। क्या यह महज आकस्मिक संयोग है कि निर्गुण आंदोलन का विरोध करने वाली शक्तियां अकबर द्वारा परिवर्तित दीन इलाही की सफलता के लिए भी जिम्मेदार हैं? यदि यह सच है तो फर्क सिर्फ इतना है कि एक का नेतृत्व हिंदू साम्प्रदायिकता ने किया था दूसरे तो मुसलमानों ने कुछ दूर तक साथ दिया तथा दूसरे का विरोध मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने किया तो हिंदुओं ने प्रायः अपने उदासीनता दिखाई। यहाँ दीन इलाही में निर्गुण आंदोलन का प्रभाव या विकास ढूंढना मेरे उद्देश्य नहीं है। मैं कहना सिर्फ यह चाहता हूँ कि इन दोनों का विरोध करने वाले मुख्यतः हिंदू मुस्लिम पुरोहित और सामंत रहे हैं और अकबर कहीं न कहीं पश्चिम उत्तर से लेकर उत्तर भारत तक फैली हुई नामदेव तुकाराम नानक कबीर जायसी आदि की जाति धर्म निरपेक्ष संत परंपरा के साथ दिखाई पड़ता है। चाहे जाति धर्म निरपेक्ष सामाजिक दबाव के कारण, चाहे अपनी तनिक विविधता के कारण, अथवा शुद्ध रूप से अपनी प्रशासनिक कूटनीति के कारण कारण जो भी हो, परिणाम स्पष्ट है कि जनसाधारण से उसका कोई सीधा विरोध नहीं था, क्योंकि मध्ययुगीन भारतीय समाज का मुख्य अंतर विरोध राजसत्ता और जनता के बीच न होकर लोक धर्म और शास्त्र के द्वंद्व के रूप में दिखाई पड़ता है। समाज के अंतर विरोध की तर्क संगत व्याख्या सबसे पहले आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत की। इस क्रम में उन्होंने आर्य ग्रंथों के साथ आर्यतर कला संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया तथा पाली प्राकृत एवं अभ्रंश साहित्य की पूरी छानबीन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि को विकसित किया है। जो लोग यह समझते हैं कि आचार्य द्विवेदी शुक्ल जी से आक्रांत हैं अथवा उन्होंने अपनी मौलिकता का परिचय दिए बिना उनकी सारी सामग्री बटोर कर उस पर पच्चीकारी मात्र की है, उसे कम से कम आचार्य द्विवेदी के साहित्य में मौलिकता का प्रश्न शीर्षक निबंध का पारायण जरूर करना चाहिए। नोटेड कामा। परंपरा के प्रति या समाज के विकासवान व्यक्तित्व के प्रति विद्रोह ही मौलिकता नहीं है, और परंपरागत विषय वस्तु का विन्यास मौलिकता का विरोध भी नहीं है। मौलिकता परंपरा प्राप्त विचारों के इस प्रकार की सजावट में है जो साधारण पाठक को सामाजिक मंगल के रूप स्वरूप को अधिक स्पष्ट और ग्रहणीय बना सके। विचार प्रवाह। इसलिए प्रतिक्रियात्मक मानसिकता के चलते यह न केवल जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, बल्कि आचार्य द्विवेदी को प्रगतिशील आलोचना की धारा से निकालकर किनारे खड़ा कर देने की ओर संकेत भी करता है। रही बात आचार्य शुक्ल का नाम लेने न लेने या कम लेने की, तो क्या इसी को किसी परवर्ती आलोचक के इतिहासकार की मौलिकता के जांचने का एकमात्र मौलिक प्रतिमान माना जा सकता है? यदि गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि सूर्य के बाल वर्णन संबंधी एकाधिक पदों को एक दूसरे के समांतर रख दे कर देखा जाए तो पर्याप्त समानता के बावजूद क्या गोस्वामी जी की मौलिकता संदिग्ध हो जाएगी? इसलिए यहाँ मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आचार्य शुक्ल के बाद आचार्य द्विवेदी ने शायद इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास आदि इतिहास ग्रंथों में आचार्य द्विवेदी की विकसित इतिहास दृष्टि का परिचय मिलता है। लोक जीवन की भावभूमि पर आधारित उनकी लोक धर्म और शास्त्र के द्वंद्वात्मक व्याख्या निश्चय ही आचार्य शुक्ल से भिन्न इतिहास दृष्टि है जो हमारी जातीय साहित्य की परंपरा की पहचान कराती है। मुक्तिबोध ने इस परंपरा को पहचाना और वास्तववादी दृष्टि से उसकी पुष्टि की तथा अंततः डॉक्टर नामवर सिंह को भी दूसरी परंपरा की खोज करनी पड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक धर्म को मध्यकालीन भारतीय समाज की प्राणधारा के रूप में रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि 15वीं-16वीं शताब्दी के 200 वर्षों के इतिहास में टीकाओं और भाष्यों की भरमार क्यों हो गई। क्या इसलिए नहीं कि लोक धर्म की प्राणधारा के बाढ़ में वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह डूब जाने का खतरा पैदा हो गया था और टीकाकारों का राहत कार्य भी बाढ़ पीड़ित वर्ण व्यवस्था के लिए बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। इस स्थिति का जायजा लेते हुए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, ए नोटेड कमा, देश में पहली बार वर्णाश्रम व्यवस्था को इस विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अब तक वर्णाश्रम व्यवस्था का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। आचार भ्रष्ट व्यक्ति समाज से अलग कर दिए जाते थे और वे एक नई जाति की रचना कर लेते थे। इस प्रकार सैकड़ों जाति उपजातियों की सृष्टि करते रहने पर भी वर्णाश्रम व्यवस्था एक तरह से चलती ही जा रही थी। इसमें अगर कभी विद्रोह हुआ था तो यह वैराग्य प्रधान साधु संतों के द्वारा, परंतु अब की बार समस्या बड़ी टेढ़ी हो चली। सामने एक विराट शक्तिशाली प्रतिद्वंदी समाज था। घर में ही वैराग्य प्रधान साधुओं का भारी विद्रोह था। ये दो बातें वर्णाश्रम व्यवस्था को हिला देने के लिए काफी थी, परंतु तीसरी शक्ति तो और भी विचित्र और अद्भुत थी। निम्न श्रेणी के साधक अपनी महिमा शालीन प्रतिभा और साधना के बल पर ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक के गुरु बन रहे थे, और सो भी न तो समाज से निकलकर और न वैराग्य को धुनी रमाकर। इस विकट परिस्थिति को संभालना शास्त्र के लिए असंभव उठा था। टीकाकारों ने बहुत प्रयास किया पर व्यर्थ है। कमाबंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली खंड 4। आचार्य द्विवेदी के इस विवेचन से स्पष्ट है कि शोषित पीड़ित मानवता के अधिकारों का हनन करने वाली वर्णाश्रम व्यवस्था के कठोर नियम और आचार विचार की रूढ़िवादिता के परिणाम स्वरूप नाना जातियों उपजातियों का एक विशाल समाज चुनौती के रूप में उसके सामने खड़ा था, और ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक के गुरु बनने वाले संतों का निर्गुण आंदोलन अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर समाज से सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही समाज को भ्रमित करने वाले शास्त्रों के विरुद्ध संघर्ष भी कर रहा था। इस अवधारणा को और स्पष्ट करते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं, यूनाइटेड कामा, महत्व की बात यह है कि समाज के भीतर मानव संबंधों की जो व्यवस्था है वह अवस्था अर्जित ज्ञान परंपरा या भाव परंपरा में ही अपने आप को उद्बुद्ध और सचेत पाती है। मध्ययुग में निम्न वर्ग से आए संत और कवि इस अर्जित ज्ञान परंपरा का या भाव परंपरा में कुछ फेरफार करके अपने को उद्बुद्ध और सचेत पाते हैं। इस अर्जित ज्ञान परंपरा या भाव परंपरा के कुछ तत्वों को अपने लिए उपयुक्त समझ उसके आधार पर अपनी स्तुति संगठित करते हैं कि इन तत्वों के अनुसार जो बातें समाज में नहीं है या उसके बिल्कुल विरुद्ध जाती हैं उनका खंडन करते हैं, अथवा ऐसी जीवंत पद्धति या भाव पद्धति का निर्माण करते हैं जिनसे वे प्रतिकूल बातें खंडित हों। इस प्रकार वे एक ओर समाज के साथ सामंजस्य तो दूसरी ओर उसके साथ द्वंद्व, इन दोनों का निर्माण करते हैं। समाज के साथ सामंजस्य और द्वंद्व की यह युगपत प्रतिक्रिया हमें भक्ति आंदोलन में परिलक्षित होती है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 5। किंतु आगे चलकर द्वंद्व की यह प्रक्रिया समन्वय की विराट चेष्टा में खो गई और वही वर्ण व्यवस्था के जिस नींव पर रामचरितमानस का भव्य ताजमहल खड़ा किया गया उसकी बाहरी चमक दमक में लंका दहन के भीषणतम आगजनी और क्रूरतम नरसंहार की करुण गाथा भी खो गई। इन दो विरुद्धों के बीच से फूट पड़ा है राम का उज्ज्वल कर्म सौंदर्य। अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ते हुए धर्म और मंगल की ज्योति बनकर अर्थात धर्म की जय और अधर्म का नाश का उद्घोष करते हुए कर्म सौंदर्य की यह छटा नाना घटनाओं को विविध क्रिया व्यापारों के माध्यम से बाह्य जगत में प्रसार पाती है। इसीलिए जय का सौंदर्य कर्म सौंदर्य का नियामक बन जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आशा करते हैं कि विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है और उसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। चिंतामणि भाग 1। वस्तुतः भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक परंपरा में धर्म और अधर्म, मंगल और अमंगल, पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक, ब्राह्मण और बौद्ध, आर्य और अनार्य आदि ऐसे जुड़वा शब्द हैं जो हमारी जातीय परंपरा का निर्माण करते हैं। इनके बीच सामंजस्य और द्वंद्व की एक युगपत प्रतिक्रिया सतत क्रियाशील रहती है जिसे खंडित कर देने से हम आधा सत्य ही देख पाते हैं। इसलिए धर्म और मंगल के आलोक में जगमगाते हुए कर्म सौंदर्य को तो हम देख लेते हैं, लेकिन अधर्म और अमंगल के अंधकार में प्रच्छन्न उसका एक हिस्सा हमारी आंखों से ओझल ही रह जाता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि सामाजिक स्थिति प्राप्त की बिना किसी भी शक्ति साहित्यिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकती। अतः एक वर्ग विभाजित समाज में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सत्ताधारी वर्ग की यह बराबर कोशिश होती है कि अधिकार वंचित शोषित शक्तियां समाज में प्रतिष्ठित न हो सके, क्योंकि उससे उनकी सत्ता के लिए खतरा पैदा हो जाने की संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि सत्ता के उस खतरे को अंधविश्वासी जनसाधारण के बीच धर्म और संस्कृति के खतरे के रूप में प्रचारित किया जाता है। आर्य धर्म की दुहाई देकर पुराणों की भाषा में आर्येतर शक्तियों को अत्याचारी, अधर्मी, राक्षस आदि कहना जय काव्यों की परंपरा रही है। इसके जस्टिफिकेशन के लिए अपहरण की किसी घटना की कल्पना भी आवश्यक हो जाती है। महाभारत में बाणासुर कृष्ण संघर्ष अथवा रामायण में राम रावण संघर्ष दोनों में यही प्रतिक्रिया काम करती है। इन संघर्षों के पीछे अपहरण की घटना तो पारिवारिक और प्रासंगिक है, किंतु व्यापक सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुख्य कारण है शैव और द्रविण अथवा अनार्य शक्तियों का नृशंसतापूर्वक दमन। वस्तुतः शैव मतावलंबी अनार्य द्रविण भक्ति शक्ति को आर्य धर्मानुदोदित वैष्णव परंपरा के विरुद्ध एक प्रति परंपरा के रूप में खड़ा किया गया है और उसके ऊपर परंपरा की विजय दिखलाकर पुराण मतावलंबी गोस्वामी जी ने ईश्वरीय चमत्कार से आक्रांत जनता पर अपना शास्त्रानुमोदित निर्णय ला दिया है। यह प्रति परंपरा वस्तुतः निर्गुण आंदोलन की विगतिशील परंपरा है जो बौद्ध धर्म से अनुबोधित तथा शैव और भागवतों के संयुक्त जुझारू शक्ति के से अनुप्राणित होकर शास्त्र और प्रवंचनाओं के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णाश्रम व्यवस्था के वर्गीय हितों के रक्षार्थ उसे अपने अनुरूप ढाल कर अत्याचारी रावण के मिथक के साथ जोड़ते हुए पुराने धार्मिक संघर्ष और तत्कालीन विचारधारात्मक समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया। यह सच है कि गोस्वामी जी ने निम्न वर्गीय भक्ति स्वीकार की, लेकिन अपनी शर्तों पर निम्न वर्गीय जनता के सामाजिक सीमा निर्धारित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि राम के सामने सभी बराबर हैं, फिर भी वर्णाश्रम व्यवस्था जातिवाद के शास्त्रीय विधि विधान को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने इस समाज को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ईश्वर के अवतारी मिथक का इस्तेमाल करते हुए ईश्वरकृत समाज का भ्रम उत्पन्न कर गोस्वामी जी ने जनसाधारण में जो आत्महंता आस्था पैदा की वह आज विभूत बच्चे के हाथ में पकड़ाई हुई तलवार सिद्ध हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने उस आत्महंता आस्था को इतना पुख्ता बना दिया कि वर्तमान समाज व्यवस्था में भी राजभक्ति और स्वामी भक्ति का वह नुस्खा सत्ता व्यवस्था की रक्षा के लिए एक कारगर हथियार सिद्ध हो रहा है। चुनाव का मौसम आते ही सत्ता के बड़े बड़े दावेदार शबरी और आदिवासी इलाकों और निषाद के गांव में अपनी सहानुभूति बांटकर मत बटोरने के लिए पहुंच जाया करते हैं। संयोगवश यदि चुनाव क्षेत्र अनाथ लगने वाले किसी युवा प्रत्याशी का हुआ तो वहां सहानुभूति बांटने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि बेसहारा जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव रखने वाली जनसाधारण की करुणा मत बटोरने के लिए किसी कल्पवृक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण उठती है। दरअसल ऐतिहासिक सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए व्यवस्था बराबर मिथकीय अवधारणाओं का सहारा लेती रहती है। यही कारण है कि सामंतवाद को पुरोहितवाद के हितों में अतिसंख्य मिथक गढ़े और प्रचारित किए गए। अक्सर वर्ण वर्ण घृणा और एक दूसरे को नीचा दिखाने के क्रम में अपने नायक को स्थापित किया गया। चतुर्वर्ण मया षष्ट्रम या शुद्ध ब्रह्मा के पैर से निकलने बताए गए हैं। मनुष्य लेकर व्यास और तुलसीदास जाने अनजाने उसके पृष्ठ पोषक रहे हैं। फल यह हुआ कि नारी और अंत्यजों का मनोबल हमेशा रौदा जाता रहा। सीता द्रौपदी आदि की विसंगतियां और हनुमान जैसे वीर भी रामचंद्र के गुलाम। गार्गी के और प्रश्न करने पर शिरोच्छेद की धमकी और एकलव्य का अंगूठा कटवा लेना तथा शंभुक का शिरोच्छेद सारिका मिथकी कहानियां और आधुनिक संदर्भ। जिस प्रकार साहित्य शिष्ट समुदाय की भावना और प्रवृत्तियों का पोषक तथा उसके वर्गीय हितों का रक्षक हुआ करता है, उसी प्रकार जनसाधारण की भावनाएं उनके श्रम जीवनियों द्वारा रचित लोकगीतों में व्यक्त होती गई हैं। इस प्रकार लोकगीत जनसाधारण के सुख दुख हास प्रयास संघर्ष सृजन तथा करुण व्यथा को व्यक्त करने वाले कथा काव्य हुआ करते हैं और उनमें मिथकीय अवधारणाओं का बाहुल्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के मृगया प्रसंग जे मृग राम बाण के मारे ते तनथजी सुरलोक सिधारे के माध्यम से सामंती हिंसा को जिस प्रकार महिमा मंडित किया उसका प्रतिरोध करती हुई लोकगीतों की मिथकीय अवधारणा अवधि के इस सुहर गीत में करुण कथा बनकर फूट पड़ी है। इनोटेड कामा छापक पीण छिव लिया की पतवन गहबर हो तेहि तर ढाढ़ हिरणिया मने मन अनमन हो। इनोटेड कामा छिवली पीण की घनी छाव के तले खड़ी हिरनी अनमनी है। हिरण पूछता है इनोटेड कामा क्या तालाब सूख गए हैं चारागाह सूख गए हैं आखिर इस अनमनेपन की वजह। इनोटेड कामा हिरणी कहती है कि न तालाब सूख गए हैं न चारागाह उदासी की वजह यह है कि कल राजा जी की लड़की की हट है और वे तुम्हें मार डालेंगे। हिरण मारा जाता है। दुखी हिरणी मचिया पर बैठी माँ कौशल्या से प्रार्थना करती है कि मांस तो रसोई में पकेगा मेरे हिरण की खाल मुझे दे दे देख देख कर मन को समझा लूंगी कि मेरा हिरण अभी भी जीवित है। रानी कौशल्या इनकारती है कि तुम्हें हिरण की खाल भी नहीं मिलेगी उससे तुम्हें झंझड़ी मड़वाऊंगी मेरा राजकुमार उससे खेलेगा। हिरणी अब भी खड़ी है उस छिवली की घनी छाव में मगर शोक विवल होकर असहाय भाव से महज विसूर रही है। खंजड़ी की आवाज है पर उसकी पूरी दुनिया सुनी है। इस मिथक में स्पष्ट इंगित है कि सामंतवाद का पूरा अस्तित्व उसका आमोद प्रमोद निम्न वर्ग के शोषण पर आधारित है। यह छोटा सा मिथक गीत सुहर के रूप में इतनी महान रचना है कि रामकथा के सारे तामझाम भरे साहित्य को बौना सिद्ध कर देता है। इनोटेड कामाबंद सारिका मिथकी कहानियां और आधुनिक संदर्भ। मिथकी अवधारणाओं से भरे हुए लोकगीतों की यह विनम्र विरोध वाली जीवंत परंपरा लोक धर्म की भावभूति पर आधारित भक्त कवियों के प्रेम काव्य परंपरा में विकसित हुई जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हीनतर बताते हुए आनंद की सिद्धावस्था के खाते में डाल रखा है। भक्ति के आवरण में मुख्यतः यह श्रृंगारिक रचनाएं हैं तथा प्रेम और सौंदर्य उनका मूल चरित्र है। लेकिन सामंती विलासिता का आख्यान करने वाली दरबारी कवियों की श्रृंगारिक रचनाओं के साथ सुरसागर जैसी जातीय साहित्य की महान रचना को रखना सामाजिक विद्रोह के अभिव्यक्ति करने वाले उसके उन्मुक्त प्रेम और कलात्मक सौंदर्य का अपमान करना होगा। यही नहीं मीरा और विद्यापति की रचनाएं भी व्यापक सामाजिक प्रभाव और ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रुग्ण मानसिकता वाले रीतिकालीन श्रृंगारिक रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने स्वयं जी भरकर कोसा है। इतना ही नहीं आचार्य शुक्ल ने वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज रासो पद्मावत और यहाँ तक कि हमीर रासो को भी सुरसागर से श्रेष्ठतर स्वीकार करना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि तुलसीदास और उनके रामचरितमानस से आक्रांत होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास के विवेचन में अनेक अंतर्विरोधों से ग्रस्त है। गोपियों के रोमांटिक प्रेम को पक्षियों के समान स्वच्छंद और जीवनोत्सव के रूप में स्वीकार करने के बावजूद उसे एकाकी और लोकबाह्य मानने के पीछे मूल कारण क्या सुरसागर में लोक संग्रह का अभाव है अथवा आचार्य शुक्ल की लोक संबंधी सीमित अवधारणा। लोक संग्रह का प्रतिमान कर्म सौंदर्य एक सामंती प्रवृत्ति है जिसका विकास मृगया आखेट हिंसा युद्ध आदि प्रसंगों में होता है। राम के उज्ज्वल चरित्र का सबसे जीवंत रूप वनवास वनवासियों से भेंट निषाद मिलन तथा शबरी के आतिथ्य जैसे मानवीय प्रसंगों में दिखाई पड़ता है जिनकी मूल भाव भूमि लोक जीवन और लोक धर्म है। इस दृष्टि से सुरसागर बहुत समृद्ध है। हाँ, उसमें अवतारवादी सामंती कर्म सौंदर्य का अभाव अवश्य है, किंतु यह उसका गुण है, दुर्गुण नहीं। सूरदास ने महाभारत, भागवत और गीता के ईश्वरीय और अवतारी मिथकों को अधिकांश तोड़ते हुए प्रायः कृष्ण को मानवीय धरातल पर उतार कर अपनी जिस प्रकृतिशीलता का परिचय दिया है, ऐतिहासिक सामाजिक विकास प्रक्रिया में इस एक सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल का लोक तुलसीदास का वही सीमित लोक वर्णाश्रम धर्म है जिसकी रक्षा के लिए राम को अवतार लेना पड़ता है। दूसरी बात यह कि लोक संग्रह के होने या कम होने की जांच पड़ताल का ठोस आधार होगा उस रचना को लोक ग्राह्यता, और इस दृष्टि से कृष्ण कथा राम कथा की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर जनता के चित्त प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने के कारण कहीं ज्यादा व्यापक और लोकप्रिय है। इसीलिए आचार्य विश्वा द्विवेदी गोपियों के प्रेम को लोकवादी स्वीकार करते हुए अपने सही इतिहास बोध और विवेचन के वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय देते हैं। डॉक्टर नामोर सिंह के अनुसार जिस प्रेम को शुक्ल जी लोकवाय कहते हैं, वह दरअसल एक निश्चित सीमा में जकड़े हुए लोक से बाहर है, निष्प्राण नियमों और रीति रिवाजों में बंधे हुए समाज से बाहर निकलने का प्रयास है। उस प्रेम की एकांकिकता ही उसकी लोकोन्मुक्तता है, और वैयक्तिकता ही सामाजिकता, जैसा कि हर रोमांटिक विद्रोह में होता है। दूसरी परंपरा की खोज। यह कारण है कि मानव मन की मूल वृत्ति और उसका स्वभाव प्रेम हिंदू शास्त्रकारों और टीकाकारों का सर्वाधिक कुभाजन रहा, क्योंकि वह शास्त्रों के निष्प्राण नियमों और वर्जनाओं के बंधन तोड़कर उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त होता आया है। यदि वर्जना का सीमित लोक सचमुच शक्तिशाली होता तो गोस्वामी तुलसीदास न तो भक्ति आंदोलन के अंतिम कवि सिद्ध होते और न ही रीतिकालीन श्रृंगारिकता को पनपने का अवसर मिलता। समाजशास्त्रीय विश्लेषण और व्यापक ऐतिहासिक परंपरा को उतना महत्व न देने के कारण ही आचार्य शुक्ल की लोक संबंधी अवधारणा शास्त्र और काव्यशास्त्र की सीमाओं के बहुत बाहर नहीं जा पाती। इसलिए भौगोलिक दूरी को ही प्रमुख आधार मान लेने के कारण रागमती और सीता की विरह वेदना तो उन्हें ग्राह्य हो जाती, किंतु गोपियों की विरह व्यथा बैठे ठाले का रोना प्रतीत होती है। कहना न होगा कि भौगोलिक दूरी के इस यांत्रिक प्रतिमान से गोपियों के वियोग की इस ऐतिहासिक दूरी को नहीं मापा जा सकता, जो चरागाही संस्कृति से सामंती संस्कृति तक का फैलाव लिए हुए महाकवि सूरदास के सुर सागर में सिमट आई है। हम कभी उसे नॉस्टैल्जिया और कभी यूटोपिया के रूप में पहचानने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। कृष्ण से गोपियों का वियोग केवल पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का वियोग नहीं, एक दूसरे समुदाय का अपने मार्गदृष्टा लोकनायक से वियोग है। कृष्ण का मथुरा प्रवास वस्तुतः उनके वर्गीय चरित्र का परिवर्तन है, और गोपियों का वियोग पूरे ब्रज का वियोग है। सब मिलाकर ब्रज की चारागाही संस्कृति को उजड़ने और मथुरा के सामंती संस्कृति में रूपांतरित हो जाने का दुख भी कहीं न कहीं उसमें निहित है। माना कि ब्रज और मथुरा के बीच उतनी दूरी नहीं है जितनी दंडकारण्य और लंका अथवा चित्तौड़ और सिंगलद्वीप के बीच है, किंतु क्या जरूरी है कि दूसरी के साथ नॉस्टैल्जिया की घटती बढ़ती जाए। मैं सुरसागर से केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। ओधो मैं ब्रज बिसरत नाहीं, हंस सुता के सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। वैभव और ऐश्वर्य से संपन्न राजधानी के सहज सुलभ सुविधाओं के बीच पल रहे कृष्ण को ब्रज इतना हांट क्यों करता है? क्या इसलिए नहीं कि उनके जीवन के सर्वोत्तम क्षणों के धड़कन वहां कैद है? क्या इसलिए नहीं कि ब्रज उनके लिए महज एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का एक समूचा परिवेश, एक मुकम्मल संस्कृति और एक भरा पूरा कुटुंब है? क्या इसलिए नहीं कि वहाँ प्राण धारा यमुना है, कुरिल कुंजों के सघन छाया वाले कगार के स्वच्छंद प्रकृति जटा कृष्ण की रंगभूमि, लीला भूमि और कर्म भूमि है? क्या इसलिए नहीं कि वहाँ ग्वाल बालों के साथ गाय और बछड़े हैं, यशोदा और नंद है, राधा और गोपियां हैं? पूर्वानुभूत जीवन की एक जीती जागती जिंदगी के प्रति ऐसी हुड़क और कसक, ऐसी टीस और चुभन की स्वस्थ करुण वेदना कहाँ मिलेगी? किस रामचरितमानस या पद्मावत में जो सारे चमक दमक से भरे हुए सामंती छल छद्म और उसकी कृत्रिमता को नंगा कर रख देती हो? गोपियों की संस्कृति में मथुरा ही परदेश यानी विदेश है, लेकिन अब इसका क्या कीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को महज एक तुलसीदास के सीता का प्रेम छोड़कर विद्यापति, मीरा और सूर आदि सभी का प्रेम एकांतिक और लोकवाह्य प्रतीत होने लगता है। इस संदर्भ में मुक्तिबोध ने लिखा है, सीता के प्रति राम की प्रेमावली पद्धति को उन्होंने, आचार्य शुक्ल ने, अत्यंत उत्कृष्ट बतलाया है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से सीता के जीवन गाथा को देखने पर ज्ञात होता है कि इस साध्वी नारी को सामाजिक नियम विधानों के कारण कितना दुख और कष्ट उठाना पड़ा है। मुक्तिबोध रचनावली खंड 5। जाहिर है कि मुक्तिबोध इस प्रेम पद्धति को सीता के जीवन गाथा के पूरे ऐतिहासिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इस प्रक्रिया में उनके सामने आदि कवि वाल्मीकि की रामायण तथा भवभूति के उत्तर रामचरित की महामानुषी सीता के करुण जीवन गाथा भी है, जिसे पूरी मानवीयता के साथ उन्होंने दुलारा है। व्यवस्था के पक्ष में अनेक मौलिक उद्भावनाएं करने वाले गोस्वामी जी मानवीय करुणा के उस मार्मिक प्रसंग को साफ बचा गए हैं। सीता का चरित्र राम से कम उज्ज्वल नहीं है, लेकिन उनकी करुणा का सारा स्रोत ईश्वर के प्रतिनिधि राम के पक्ष में उमड़ रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में पहली बार वाल्मीकि और भवभूति के मानवीय करुणा कुछ ज्यादा चमकदार बनकर महाप्राण, निराला के सरोज, स्मृति, विधवा व तोड़ती पत्थर जैसी रचनाओं में तथा किसान जीवन के महान कथाकार प्रेमचंद के गोदान में किसान जीवन के करुण महागाथा बनकर फूट पड़ी है।